दुनिया अनेक दावों से भरी पड़ी है और कभी कभी सत्य को गलत से पहचानना कठिन होता है, तो हम यीशु के दावों का मूल्यांकन कैसे करें? चारों सुसमाचार आपको सबूत देते हैं कि आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर के पुत्र है। वे आपको आकार देखने के लिए आमंत्रित करते हैं और जैसे ही आप यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर ईमानदारी से नज़र डालेंगे, आप विश्वास के साथ उनके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम होंगे। 17:39 मसीह अपनी बाइबल में यूहन्ना 20 खोले। मान लीजिए आप किसी अपरिचित शहर में हैं और आपका सेल फोन खो गया है। आपको एक ऐसी जगह पर जाना है जहां आप पहले कभी नहीं गए हो और आप नहीं जानते कि वहां कैसे पहुंचा जाए। ऐसे दो तरीके हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप दिशा निर्देश मांग सकते हैं। कोई आपको बता सकता है कि आपको 29 नंबर की बस पकड़नी है, पुराने सीमेंट कारखाने के बाद दूसरे स्टॉप पर उतरना है, बाईं ओर तीसरी सड़क लेनी है, पुल के ऊपर से जाना है, मैदान के पार पुल के नीचे से होकर जाना है और फिर आपके दाएं तरफ आपकी मंजिल होगी। दूसरा तरीका, टैक्सी लेना होगा। आप ड्राइवर से आपको अपने गंतव्य तक ले जाने के लिए कहेंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए आपके पहले उदाहरण में जैसे ही आप बस में चढ़े, जिस आदमी ने आपको निर्देश दिया था उसे दिल का दौरा पड़ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। यह दुखद घटना आपकी यात्रा में बाधा नहीं बनेगी क्योंकि आपके पास पहले से ही निर्देश है। परंतु मान लीजिए कि आप टैक्सी में हैं और जैसे ही आप पुराने सीमेंट कारखाने के पास से गुजर रहे हैं, ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप पूरी तरह से फंस गए हैं। आप अपनी मंजिल का रास्ता नहीं जानते और जिस पर आपने भरोसा किया था वो आपको वहां तक ले जाने में असमर्थ है। ईसाई धर्म का मूल निर्देशों के समूह में नहीं, बल्कि हमें स्वर्ग में ले जाने की यीशु की क्षमता में निहित है। नए नियम की शिक्षा आपको नहीं बचाएगी, बल्कि वो यीशु मसीह है जो आपको बचाएंगे। ईसाई धर्म जो वादा करता है उसे पूरा करने की यीशु की क्षमता के साथ खरी होती है या गिरती है। यीशु हमें बताते हैं कि वे हमें पिता के पास ला सकते हैं और जब टैक्सी ड्राइवर की तरह वे हमें अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं तो हमें एक निर्णय का सामना करना पड़ता है। क्या मैं अपने भाग्य को उन पर लगाने के लिए तैयार हूं? यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा गया था कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कल्पना कीजिए कि आप किसी अदालत की न्यायिक परिषद में हैं। प्रेरित यूहन्ना आपको कुछ सबूत प्रस्तुत करना चाहते हैं और जब वो समाप्त हो जाएगा तो वे निर्णय के लिए आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यूहन्ना आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही वे आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। वे आपको वो सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे उन्होंने यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रत्यक्ष गवाह के रूप में देखा और सुना है। वो बस इतना चाहते हैं कि आप सबूत सुने। आओ और देखो। यदि आपसे एक वाक्य में ईसाई धर्म के मूल को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? यूहन्ना ने आस्था के सार को केवल चार शब्दों में समेटा है, यीशु ही मसीह है। इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि मसीह नाम का क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु को जन्म के समय यीशु का नाम दिया गया था, तो हम उन्हें यीशु मसीह क्यों कहते हैं? हमारा हिंदी शब्द मसीह ग्रीक शब्द क्रिस्तोस से आया है, जिसका अर्थ है मसीहा या अभिषिक्त व्यक्ति। मसीह एक उपाधि है जो वादा किए गए व्यक्ति को संदर्भित करती है जिसे परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त किया जाएगा, और पुराने नियम में अभिषिक्त लोगों की तत्काल समीक्षा से हमें इसके महत्व को समझने में मदद मिलेगी। बाइबल की पूरी कहानी में परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं ताकि हम उन्हें जान सके। वे हमें स्वयं से मिलाते हैं ताकि हम उनके पास आ सके, और वे दुनिया पर शासन करते हैं ताकि उनके उद्देश्य पूरा हो सके। पुराने नियम में कुछ लोगों को एक संकेत के रूप में अभिषिक्त किया गया था कि परमेश्वर उन्हें इनमें से किसी एक तरीके से उपयोग करेंगे। वे भविष्यवक्ता, पुरोहित और राजा थे। जैसे जैसे पुराने नियम की कहानी आगे बढ़ी, यह उम्मीद बढ़ती जा रही थी कि एक दिन परमेश्वर एक सर्वश्रेष्ठ अभिषिक्त व्यक्ति को दुनिया में भेजेंगे। परंतु चूंकि परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति भविष्यवक्ता, पुरोहित या राजा हो सकता है, इसलिए यह समझना आसान है कि मसीहा के संबंध में कितनी विभिन्न उपेक्षाएं विकसित हुई। कुछ लोगों ने सोचा कि वह एक भविष्यवक्ता होगा जो लोगों को धार्मिकता की ओर बुलाएगा। अन्य लोग एक ऐसे पुरोहित की तलाश में थे जो प्रामाणिक आराधना को पुनर्स्थापित करेगा, और अन्य लोग आश्वस्त थे कि मसीहा एक स्वतंत्र सेनानी होगा जो राजनीतिक विद्रोह का नेतृत्व करेगा और परमेश्वर के लोगों को रोमन साम्राज्य के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएगा। परंतु जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने एक नहीं बल्कि पुराने नियम के सभी कर्तव्य को पूरा किया। परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, तुम जाओ और उनके भविष्यवक्ता बनो, तुम जाओ और उनके पुरोहित बनो, तुम जाओ और उनके राजा बनो। यीशु मसीह परमेश्वर के अभिषिक्त है, और यूहन्ना हमें ये दिखाने के लिए सबूत देते हैं कि वे ही वही है जो परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करते हैं, पुरुषों और महिलाओं को परमेश्वर से मिलाते हैं और परमेश्वर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। यूहन्ना इस बात का प्रमाण देते हैं कि यीशु ही मसीह है। वे पुरोहित है जो हर मन और जीवन के रहस्य को जानते हैं। वे एक सामरी स्त्री के बारे में छिपी सच्चाई जानते थे। यीशु से मिलने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। परंतु यीशु एक भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है। जब महिला ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यीशु वो पुरोहित है जो हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में अपना जीवन देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के पहचान परमेश्वर के मेमने के रूप में की जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परंतु यीशु एक पुरोहित से भी बढ़कर है। जब यूहन्ना के शिष्यों में से एक अंद्रियास ने यीशु का अनुसरण करना शुरू किया तो उसने अपने भाई पत्रस से कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। यीशु वो राजा है जो हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है। एक दिन वो लाजर की कब्र पर आए जो 4 दिन पहले मर गया था। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और उन्होंने मृत व्यक्ति की बहन से पूछा कि क्या वो इस पर विश्वास करती है। हां हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। यीशु ने ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। और लाजर जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। यीशु वो राजा है जो हमें मृत्यु और नरक के अत्याचार से मुक्ति दिला सकता है। जब हम जान जाएंगे कि यीशु भविष्यवक्ता पुरोहित और राजा है, तब हम समझ जाएंगे कि उन पर विश्वास करने का क्या अर्थ है। इसलिए यीशु पर विश्वास करने का अर्थ यह है कि हम उस पर विश्वास करते हैं जो वे भविष्यवक्ता के रूप में कहते हैं और हम उनके वचन को सत्य के रूप में लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम उन पर पुरोहित के रूप में विश्वास करते हैं कि वे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाए। इसका अर्थ है कि हम एक राजा के रूप में खुद को उनके अधीन कर देते हैं, उनके अधिकार और शासन के अधीन रहने के लिए। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, तो आपका जीवन पूरी तरह से अलग होगा। विश्वास करने से आपको उसके नाम से जीवन मिलेगा। यीशु ने उस प्रचुर जीवन के बारे में कहा जो केवल वे ही दे सकते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसका क्या अर्थ है? बाइबल कहानी की शुरुआत में आदम और हव्वा ने भय और निराशा से मुक्त जीवन का आनंद लिया। उन्होंने सुंदर परिवेश में सार्थक कार्य किया, परंतु सबसे बढ़कर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति और सहचर्या का आनंद लिया जो बगीचे में उनके साथ टहलते थे। उनके पास बहुतायत का जीवन था, परंतु उन्होंने उसे खो दिया और हम कभी नहीं जान पाए कि उन्होंने क्या आनंद लिया। यीशु हमें इस पतित संसार की सभी बीमारियों, खतरों, आपदाओं और मृत्यु से मुक्ति दिलाने और हमें एक बहुतायत के जीवन में लाने के लिए आए जो अभी शुरू हुआ है और अनंत काल के लिए जारी रहेगा। यीशु पर विश्वास करने से ही हमें यह जीवन उनके नाम पर मिलता है। पादरी कहते हैं कि कुछ समय पहले उनकी पत्नी करेन और उन्हें एक अतिथि एकल कलाकार के साथ शिकागो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा सुनने का अवसर मिला था। वे एक बहुत बड़े कलाकार का किरदार निभा रहे थे और ये शानदार था। एकल कलाकार ने ऐसे बजाया मानो उसका धनुष उसके वायलिन में आग लगा देगा और अंत में दर्शकों ने खड़े होकर जोर से तालियां बजाई। यह अप्रतिरोध्य था। तालियां लगातार बजती रही और जब यह कम नहीं हुई तो एकल कलाकार ने अपना वायलिन उठाया और अपना प्रदर्शन दोहराया जिससे लोग शांत हो गए। पादरी कहते हैं जब वे मध्यांतर के लिए बाहर गए तो उनका उत्साह ऊंचा हो गया और दर्शक खुशी से झूम रहे थे। परंतु मनोरंजन शाला में एक बूढ़ा आदमी इस घटना से परेशान लग रहा था। जैसे ही वे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसे यह कहते हुए सुना, मैं यहां 30 साल से आ रहा हूं और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, मुझे यह पसंद नहीं है, उन्होंने कहा। मुझे इसके लिए कोई कारण नहीं दिख रहा है। पादरी कहते हैं कि उन्हें खुद को रोकना पड़ा। यहां एक व्यक्ति था जो किसी शानदार चीज की उपस्थिति में था, जिससे उसके चारों ओर सैकड़ों अन्य लोग झूम उठे थे, और उस बूढ़े व्यक्ति ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो असामान्य था। उस व्यक्ति को क्या हो गया था? जैसे जैसे हमने चारों सुसमाचार के माध्यम से यात्रा की है, हम वास्तव में कुछ शानदार चीज की उपस्थिति में रहे हैं। हमने परमेश्वर की उस अद्भुत योजना को देखा है, जिसमें परमेश्वर के पुत्र ने हमारा शरीर धारण किया, हमारे शत्रु का सामना किया, अपना जीवन बलिदान के रूप में दे दिया, मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में चढ़ गया, ताकि उनके नाम में विश्वास के माध्यम से हमें अनंत जीवन में लाया जा सके। इससे अधिक दुखद कुछ नहीं हो सकता कि किसी ने मसीह के दावों और सुसमाचार की पेशकश का सामना किया हो और वो ऐसे चला गया जैसे कि उसने कुछ भी असाधारण नहीं सुना। चारों सुसमाचार लिखे गए थे कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। क्रिस्त नाम का अर्थ है मसीहा या अभिषिक्त व्यक्ति। पुराने नियम में परमेश्वर ने दुनिया में अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भविष्यवक्ताओं, पुरोहितों और राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो उस चीज को पूरा करेगा जिसे वे केवल चित्रित कर सकते थे। चारों सुसमाचार हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि यीशु ही मसीह है और हमें दिखाते हैं कि कैसे वे भविष्यवक्ता, पुरोहित और राजा की प्राचीन भूमिकाओं को विशेष रूप से पूरा करते हैं। इतिहास का केंद्र बिंदु यह है कि परमेश्वर ने यीशु के रूप में मानव शरीर धारण किया और ये उनके माध्यम से ही परमेश्वर के सभी वादे पूरे हुए।